पृष्ठ संख्या 22, हंस का निरक्षीर विवेक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। संस्कृत साहित्य में हंस, पिक, भ्रमर और कमल की बड़ी धूम है। बिना इसके कवियों की कविता फीकी हो जाती है। कोई पुराण, कोई काव्य, कोई नाटक ऐसा नहीं जिसमें इनका जिक्र न हो। सब में कवियों ने एक न एक विशेषता भी रखी है। जैसे हंस मिले हुए दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। पिक अपने बच्चे कौओं के घोंसले में रखता है और बड़े होने तक उन्हीं से उनकी सेवा करवाता है। भ्रमर आम की मंजरी से अतिशय प्रेम रखता है पर चंपे के पास तक नहीं जाता। कमल चंद्रमा से द्वेष रखता है, उसकी विद्यमानता में वह कभी नहीं खिलता पर सूर्य का वह परम भक्त है। इनमें दो एक बातें तो निसंदेह सही है पर औरों के विषय में मतभेद है। उदाहरण के लिए हंस और उसके निरक्षीर विषयक विवेक को ही लीजिए। संस्कृत काव्यों में जगह जगह पर यह लिखा हुआ है कि हंस में यह शक्ति है कि वह दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, पर दूध और पानी को अलग अलग करते उसे किसी ने नहीं देखा। शायद किसी ने देखा भी हो पर इस विषय का कोई लेख कहीं नहीं मिलता। यह प्रवाद सात समुद्र पार करके अमेरिका पहुंचा। वहां के विद्वानों को हंस का यह अद्भुत गुण सुनकर आश्चर्य हुआ, पर वे लोग ऐसी बातों को चुपचाप मान लेने वाले कहां। इस देश में हंस विषय के यह प्रवाद हजारों वर्षों से सुना जाता है पर इसके सत्य की जांच आज तक किसी ने नहीं की। यदि किसी ने भी की होती तो उसका फल कहीं लिपिबद्ध नहीं मिलता। अमेरिका में हार्वर्ड नाम के एक विश्वविद्यालय है जिसमें लॉन्गमैन साहब एक अध्यापक हैं। अपने हंस के इस अलौकिक गुण की परीक्षा का प्रण लिया, इसीलिए आपने कई हंस मंगाकर पाले और उनके तरह की उनकी परीक्षा ली, पर पानी को छीर से अलग करने में उन्हें हंस को असमर्थ पाया। तो हंस के निरक्षीर विवेक विषयक वाक्य की क्या संगति हो। इस विषय के दो चार वाक्य सुनिए। निरक्षीर विवेके हंसा लक्ष्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्य कुलव्रतम पालयिष्यति कह। हे हंस, यदि निरक्षीर को नीर से अलग कर देने का विवेक तू ही शिथिल कर देगा तो इस जगत में अपने कुल व्रत का पालन और कौन करेगा। वितीर्ण शिक्षा इव हतपथस्थ सरस्वती वाहन राज हंसई ये क्षीर नीर प्रविभागच्छा यशाश्विनस्ते कवयो जयंती। श्रीकंठ चरित। हृदय की स्थिति सरस्वती के वाहन राज हंसों ने मानो जिसको शिक्षा दी है, ऐसे नीर क्षीर विभाग करने में दक्ष कविजनों की महिमा खूब जागरूक है। यो हनिष्यति विध्यम त्वाम रक्षम रक्षति च द्विजम हंसो ही क्षीरमादत्ते तनिष्रा वर्जयत्यमपह। शकुंतला। हंस जिस तरह क्षीर ग्रहण कर लेता है और उसमें मिला हुआ पानी पड़ा रहने देता है, वैसे ही यह वध करने योग्य तुझे मारेगा और रक्षणीय द्विज की रक्षा करेगा। प्राज्ञस्तु जलपताम पुंसा श्रुत्वा वाचा शुभ शुभ गुणद्व वाक्य मदत्ते हंस क्षीरमी वारंभसह। महाभारत आदि पर्व। लोगों के मुंह से भली बुरी बातें सुनकर बुद्धिमान आदमी अच्छी बातों को वैसे ही ग्रहण कर लेता है जैसे हंस जल में से दूध को ग्रहण कर लेता है। यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण के दूसरे अध्याय में एक वाक्य है, उसका मतलब है जिस तरह क्रौंच पक्षी जल और दूध को अलग अलग करके दूध का ही पान करता है, उसी तरह इंद्र भी जल से सोमरस को अलग करके उसका पान कर लेता है। उसकी टीका सायणाचार्य ने इस प्रकार की है। क्षीर पात्रे स्वमुखे प्रक्षिप्ते सति मुख गतरसमर्क तिच्छिरांशो जलांश संचयो भय विवेच्यते। अर्थात जल मिश्रित दूध के बर्तन में हंस जब अपनी चोंच डालता है तब मुखगत रस विशेष का योग्य होते ही जल और दूध अलग हो जाते हैं या अलग जान पड़ते हैं। इस पिछले अवतरण से यह सूचित होता है कि किसी किसी की राय में हंस के मुंह में एक प्रकार का रस होता है, उस रस का मेल होने से पानी और दूध अलग अलग हो जाते हैं। यदि इस रस में खट्टापन हो तो दूध का जमकर दही हो जाना संभव है। पर इसके लिए कुछ समय चाहिए। क्या हंस की चोंच के दूध के भीतर पहुंचते ही दूध जम जाता होगा? संभव है जम जाता हो, पर यह बात समझ में नहीं आती कि पात्र में भरे हुए जल मिश्रित दूध में से जल को अलग करके दूध को हंस किस तरह पी लेता है। अध्यापक लांगमैन की परीक्षा से तो यह बात सिद्ध नहीं हुई। अमेरिका के एक महान विद्वान ने हंस के नीरक्षीर विषयक प्रवाद पर विचार किया है। आपका नाम है डॉक्टर कामवस, आप वाशिंगटन में रहते हैं। आपका मत है कि हंस के मुंह की बनावट ऐसी है कि जब वह कोई चीज खाता है तब उसका रसमय पतला अंश उसके मुंह से बाहर गिर पड़ता है और कड़ा अंश पेट में चला जाता है। आपके मत में दूध से मतलब इसी कड़े अंश से है। बहुत रसीली चीज के कठोर अंश का बाहर बह आना संभव जरूर है, पर किसी चीज के कठोर अंश का अर्थ दूध कहना हास्यपद है। अच्छा, हंस रहते कहाँ हैं और खाते क्या हैं? हंस बहुत करके इसी देश में पाए जाते हैं। उनका सबसे प्रिय निवास स्थान मानसरोवर है। यह सरोवर हिमालय पर्वत के ऊपर है। सुनते हैं यह बहुत सुंदर है। इसका जल मोती के समान निर्मल है। यही हंस अधिकता से रहते हैं और यहीं वे अंडे देते हैं। जाड़ा आरंभ होते ही शीताधिक्य के कारण मानसरोवर छोड़कर नीचे चले आते हैं, पर विंध्याचल के आगे वे नहीं बढ़ते। विंध्य और हिमाचल के बीच ही में निर्मल जलराशि पूर्ण तालाबों और नदियों के किनारे वे रहते हैं। चैत वैशाख में वे हिमालय की तरफ चले जाते हैं। जिन जलाशयों में कमलों की अधिकता होती है वे हंसों को अधिक प्रिय होते हैं, वहीं वे अधिक रहते हैं। उनके शरीर पर का रंग सफ़ेद होता है और उनके पैर लाल होते हैं। चोंच का रंग भी लाल होता है। डिलडोल उनका बतख से कुछ बड़ा होता है। यदि हंस दूध पीते हैं तो दूध उनको मिलता कहाँ से है? मानसरोवर में उन्होंने गायें तो पाल नहीं रखी और न हिंदुस्तान ही के किसी तालाब या नदी में उनके दूध पीने की कोई संभावना है। इससे गाय भैंस का दूध पीना हंसों के लिए असंभव सा जान पड़ता है। कोई कोई कविजन कहते हैं कि हंस मोती चुगते हैं, पर मोती भी मानसरोवर में नहीं पैदा होते। यदि उसमें मोतियों का पैदा होना मान भी लिया जाए तो हिंदुस्तान के तालाबों में जहां वे कुछ दिन रहते हैं मोतियों का पैदा होना आज तक नहीं सुना गया। हाँ, एक बार हमने कहीं पढ़ा था कि पंजाब या राजपुताने के किसी झील में कुछ सुक्तियाँ ऐसी मिली थी जिनमें मोती थे, पर क्या जितने हंस मानसरोवर छोड़कर नीचे आते हैं वे सिर्फ उसी झीलों में जाकर रहते हैं और मोती चुगते हैं? वहाँ भी यदि मोती बिखरे हुए पड़े हों तब उन्हें हंसगण आसानी से चुगेंगे, पर यदि वे सुक्तियों के भीतर भी रहते हों तो उनको फोड़कर मोती निकालना हंसों के लिए जरा कठिन काम होगा। पर इन संभावनाओं का कुछ अर्थ नहीं है। निर्मल जल की उपमा मोती से दी जाती है और मानसरोवर का जल स्वयं अत्यंत निर्मल है। इससे उसके मोती सदृश जल की उपमा मोती से देते लोगों ने जल को ही मोती मान लिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। अतएव कि हंसा मोती चुगे कि भूखे रह जाएं आदि में मोती चुगने का मतलब मोती के समान निर्मल जल पीने से जान पड़ता है। यह पीने की बात हुई और अब खाने की बात का विचार कीजिए। नैषधचरित के पहले सर्ग में लिखा है कि राजा नल ने एक हंस पकड़ा। हंस आदमी की बोली बोलता है। उसने राजा से कहा, फलेन मूलेन च वारि भूरुहाम मुनेरित्थम मम यश्य वृत्तयः, अर्थात पानी से पैदा होने वाले पौधों और बेलों के फलों और कंदों से मैं मुनियों के समान अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। भामिनी विलास में जगन्नाथ राय ने हंस की एक अन्योक्ति कही है, यथा भुक्ता मृडार पटलो भवता न पीता नयम्बूनियत्र नलिनानि नशेवितानि रे राजहंस वदतस्य सरोवस्य कृत्येन केन भविनासि कृतोपकारः। हे राजहंस, जिसके आश्रय में रहकर तूने मृडाल दंडों को खाया, जलपान किया और नलिनों का स्वाद लिया, उस सरोवर का तू किस प्रकार प्रत्युत्कार करेगा? मेघदूत में कालिदास कहते हैं, आकैलाशाद बिसकी सलच्छद्योद पादे यवंत संपत्सन्ते नशभि भवतो राज हंसा सहाया, अर्थात विष और किश्लय रूपी पाथेय अर्थात रास्ते में खाने पीने की सामग्री लेने वाले राजहंस आकाश में कैलाश पर्वत से आप अर्थात मेघ के साथी या सहायक होंगे। विक्रमोर्वशीयम में भी कालिदास एक जगह कहते हैं, सुरांगनाकर्षत खंडिताग्रत सूत्र मृडालादिव राजहंसी, अर्थात यह सुरांगना मेरा मन शरीर से उसी तरह खींच रही है जिस तरह राजहंसी मृणाल से सूत्र खींचता है। इन अवतरणों से प्रकट होता है कि हंस चाहे मोती चुगते और दूध पीते हों क्यों न हो, पर वे भी पानी पीते हैं और जलरूह पौधों के फल फूल मूल नाल मृणाल और विष तंतु भी खाते हैं। हंसों को जलपूर्ण जलाशयों में रहना अधिक पसंद है, वहां इनके खाने की सामग्री विशेष करके मृणाल दंड उनके भीतर के विष तंतु और उनसे निकलने वाला रस कमल नाल को तोड़ने से उसके भीतर से सफ़ेद सफ़ेद सूत सी एक चीज निकलती है, उसी को विष तंतु कहते हैं। सुनते हैं उसे हंस बहुत खाते हैं। मृणाल दंड की गांठों से एक तरह का रस भी निकलता है, वह पतले दूध की तरह होता है, उसमें कुछ मीठापन भी होता है। इस रस का भी नाम क्षीर है। पेड़ों से लटकने वाले पानी के सदृश सफ़ेद रंग के प्रायः सभी प्रवाही पदार्थों का नाम क्षीर है। यहाँ तक कि गुलर बरगद थूहड़ और मदार तक से निकलने वाली सफ़ेद चीज को हम लोग दूध ही कहते हैं। मृणाल दंड पानी में रहते हैं, उन्हीं के भीतर से क्षीर तुल्य सफ़ेद रस निकलता है, उसी रस को हंस पीते या खाते हैं। अतएव इस तरह पानी के भीतर से निकल कर हंसों का दूध पीना जरूर सिद्ध है। अनुमान होता है कि आरंभ में इसी प्रकार के नीर क्षीर के पृथकत्व से पंडितों का मतलब रहा होगा। धीरे धीरे लोग वह बात भूल गए, उनकी यह समझ हो गई कि मामूली जल मिश्रित दूध से हंस जल को पृथक कर देते हैं और जल को छोड़कर दूध भर पी जाते हैं।